ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। आप सभी शांति प्रिय और प्रभु प्रिय आत्माएं हो। जितना हमारा प्रभु से प्रेम होगा उतना ही शांति से भी प्रेम होगा, क्योंकि शांति भी हम उनसे ही मांगते हैं। तो जो प्रभु प्रिय होगा वो शांति प्रिय जरूर होगा। तो आज का विषय है The Art and Science of Raj Yoga, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं राजयोग का आधार और विधि। क्या है राजयोग और उसका क्या है आधार बेसिस और क्या है उसकी विधि, इसमें बहुत बड़ी कला और बहुत बड़ा विज्ञान समाया हुआ है। ये अंधविश्वास की बात नहीं है, ये तर्क की भी बात नहीं है। इसे हमें विवेक से समझना होगा, भावना पूर्ण रूप से समझना होगा। तो योग क्या है ये तो हम सबने समझ लिया। योग अर्थात संबंध, ये बार बार कहना पड़ता है क्योंकि योग के नाम पर जो आज शारीरिक क्रियाएं सिखाई जाती है, प्राणायाम आसन या जो भी सिखाए जाते हैं, और योगा कहकर उसे ये बताया जाता है, पर जो असली शब्द है वो तो है योग। इसलिए योग का शाब्दिक अर्थ बहुत सहज है, पर हमने उसे कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। क्योंकि जहां आसनों की बात आती है तो जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े हैं, बड़ी आयु वाले हैं, वो तो यही कहेंगे योग वोग हमारे लिए नहीं है, हम तो बूढ़े हो गए, ये तो जवानों का काम है, इतना हाथ पांव मोड़ना मरोड़ना ये हम कैसे करेंगे, अगर हम करेंगे तो कहीं हड्डी वड्डी टूट जाए तो बुजुर्ग लोगों को कितना संभालना पड़ता है कि गिरे तो हड्डी बहुत जल्दी टूट जाती है और फिर रिपेयर करने में कितना समय लगता है, जल्दी जुड़ती भी नहीं है बुजुर्गों की हड्डियां। इसीलिए बूढ़े समझते हैं ये जवानों का काम है, और जवान क्या समझते हैं ये योग तो वैराग्य और संन्यास, ये सारे सन्यासियों का काम है, हमारा नहीं है। खाओ पियो मौज करो, हाँ कल किसने देखा है, अभी तो समय है, जवानी है, ताकत है। अगर हम योग वोग अभी करेंगे तो दुनिया का सुख कब लेंगे, हमें सन्यासी नहीं बनना है। तो वो समझते हैं योग माना योगी करते हैं और वो योगी सन्यासी होते हैं, इसलिए वो समझते हमारे लिए भी नहीं है, जब हम बूढ़े होंगे ना तब ये सब करेंगे। तो बूढ़े समझते जवानों के लिए, जवान समझते बूढ़ों के लिए, तो किसके लिए, किसके लिए जी, सबके लिए है। क्योंकि जीवन जीने की कला हमें राजयोग सिखाता है, जीवन जीना भी कला है, केवल जीवन में अलग अलग कलाएं सीखना ही कला नहीं है, पर जीवन जीना भी कला है। क्योंकि अगर जीवन में सुख शांति सब कुछ है तो सचमुच वो कला जीवन की आ गई, जिसको कहा आर्ट ऑफ लिविंग। पर अगर जीवन में दुख शांति परेशानियां कष्ट दर्द यही सारी बातें हैं, सब नेगेटिव, तो जीवन जीना एक बोझ है। और जीवन को तो कहा जाता है ये प्रभु का वरदान है, मानव जीवन हीरे तुल्य है। परंतु आज हम इस मानव जीवन को कहीं कौड़ी बदले तो नहीं गंवा रहे हैं? ये हम अपने आप से पूछें, कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा, कितना अंतर है। तो वो जो हीरे समान जीवन अगर कौड़ी के बदले हम गंवा रहे हैं, अर्थात जीवन माना हमारा श्वास, हमारे संकल्प, हमारा समय, हमारी शक्ति, अगर उसे गंवा रहे हैं तो ये जीवन व्यर्थ के खाते में जा सकता है। तो इसीलिए कैसे जिए हम, केवल बाह्य तंदुरुस्ती की बात नहीं है, पर मन की भी शक्ति हो, इमोशंस भी हमारे कंट्रोल में हो, ये सब बातें बहुत जरूरी है। प्रॉपर बैलेंस्ड लाइफ हो, लाइफस्टाइल की जहां बात आती है, तो वो लाइफस्टाइल केवल बाह्य नहीं आंतरिक भी। तो इसीलिए राजयोग का कुछ आधार है और कुछ विधि है। तो योग माना जोड़ और राजयोग माना उस सर्वोच्च से जोड़, जो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमात्मा से आत्मा का मिलन, और वो विधि बहुत ऊंची है जिसके लिए हमें कोई शारीरिक कष्ट करने की जरूरत नहीं है। पिता से मिलने के लिए बच्चे को क्या कष्ट उठाना पड़ता है? पिता खुद दौड़ा आएगा बच्चे से मिलने के लिए, बच्चे को क्यों कष्ट देगा? अगर मान लीजिए बच्चा बहुत छोटा है और पिता तो 6 फीट लंबा होगा, अब बच्चा चाहता मैं अपने पिता से गले लगाऊं, पिता को मिलूं, अब वो तो इतना छोटा है, मान लो वो 2 फीट भी होगा 3 फीट होगा, और पिता तो 6 फीट है मान लो, अब वो इतना ऊंचा इतना लंबा पिता, और वो चाहता मैं मिलूं, तो मिल नहीं सकेगा, कैसे कितनी छलांग लगाएगा। तो पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा ऐसे तकलीफ करे मेरे से मिलने के लिए, तो क्या करेगा पिता? क्या करेगा? वो खुद ही झुक जाएगा, खुद झुक जाएगा और पिता बच्चे को उठा लेगा। अब परमात्मा भी हमें यही कहते हैं, बच्चे मैं तुमको शारीरिक कोई कष्ट नहीं देता हूं, हाँ व्यायाम प्राणायाम ये शरीर के लिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है, लेकिन परमात्मा से मिलने के लिए ये जरूरी नहीं है। परमात्मा तो खुद ही आत्माओं को अपनी पहचान देने के लिए अपने साथ मिलन मनाने की विधि खुद ही बताते हैं, और फिर उनसे प्राप्ति भी कितनी ऊंची। तो जब इन बातों को हमने समझा तो हम देखेंगे ये राजयोग क्या है, क्योंकि कई प्रकार की मिथ्स है, व्यूज है, भ्रांतियां हैं। सबसे पहली भ्रांति कहो या मिथ कहो या अजम्पशन कहो, कई समझते हैं कि मेडिटेशन करना माना हमको अपने विचारों को शून्य करना होगा, चित्तवृत्ति निरोध, सप्रेशन ऑफ थॉट्स, हमारी जितनी भी अंदर के विचार उनको हमको दबाना होगा, सप्रेस करना होगा। वास्तव में ये योग नहीं है, हमको अपने विचारों को दबाना नहीं है, ब्लैंक बनने की कोशिश नहीं करनी है। और वैसे भी अगर हम कोशिश करेंगे भी ना ब्लैंक बनने की, मैं कुछ नहीं सोचूं, कुछ नहीं सोचूं, कुछ नहीं सोचूं, अब ये भी तो सोच है, मैं कुछ नहीं सोचूं, क्या ये सोच नहीं है? कि नहीं है ये सोच, है ना कि नहीं है? तो ब्लैंक बनने का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मन हमारा दुश्मन नहीं है, मित्र है। तो मन को मारना नहीं है, पर मन को मोड़ना है, दिशा प्रदान करनी है मन को, क्योंकि मन ही वो ऊर्जा है जो परमात्मा से मिलन कराएगा। इसीलिए दमन करने की बात नहीं है, पर मन को अमन करने लिए सुमन करना होगा। सुमन माना सुंदर विचारों का मनन चिंतन। ये मनन और नमन कितने सुंदर शब्द है जो मन के साथ जुड़े हुए हैं। नमन न मन, लेकिन नमन माना झुकना, ह्यूमिलिटी, और मनन न को पीछे किया तो मनन हो गया, न को आगे किया तो नमन हो गया। तो मनन अर्थात मन के अंदर वो चिंतन, मनन, बहुत सुंदर सुंदर विचार मन में लाने होंगे, और यही सुंदर विचार हमें परमात्मा तक ले जाएंगे। तो इसीलिए केवल शून्य करना विचारों को ये लक्ष्य नहीं है। और वैसे भी देखा जाए, खाली मन अगर होगा वो तो शैतान का घर बन जाएगा। इसलिए ब्लैंक बनाने की कोशिश कभी नहीं करना। फिर कई समझते हैं तो क्या मन के ऊपर दबाव डाले, दबाव शुड बी फोर्स द माइंड, फोर्स भी नहीं है। जैसे हम, अब बच्चा अपने पिता को कैसे याद करता है, माँ बाप कैसे उनको स्वतः याद आते हैं। एक स्त्री अपने पति को भूल कैसे सकेगी, मैं किसकी पत्नी हूं। पति कैसे भूल सकता है मैं किसका पति हूं। क्योंकि जहां रिश्ते होते हैं, जहां संबंध होते हैं, वो इतने घनिष्ठ होते हैं कि अगर कोई जीवन साथी या कोई भी शरीर छोड़ भी देता है तो भी उसको भुला नहीं सकते। कहते कैसे भूले, कैसे भूले। तो जहां संबंध है वहां तो भूल ही नहीं सकते। अब परमात्मा के साथ तो हमारा अनादि अविनाशी संबंध है, इसलिए दबाव डालने की बात नहीं है। फिर कई समझते हैं कि मन तो बहुत चंचल है इसलिए हम मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है, कई शिकायत करते हैं, आई कांट मेडिटेट बिकॉज माई माइंड इज टू नॉटी। अब माइंड नॉटी क्यों है? इसलिए है क्योंकि मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, और जहां नेगेटिव विचार आएंगे तो मन की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। संकल्पों की स्पीड कैसी है? अगर गाड़ी आप बहुत तेज चलाएंगे तो क्या होगा परिणाम? इसलिए रोड्स पर लिखे रहते हैं स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट। विदेशों में तो कैसे वो सीसीटीवी लगे हैं, यहां भी कहीं लगे होते होंगे, लेकिन विदेशों में जाइए बहुत संभाल के ड्राइव करना पड़ता है, क्योंकि सीसीटीवी में सब आ जाता है, वो कंप्यूटर्स है, तुरंत आपके ऊपर फाइन आ जाएगा। यू कांट स्पीड टू मच। तो मन की भी स्पीड कैसी रखनी है, कितनी रखनी है, वो हमारे कंट्रोल में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर नेगेटिव थिंकिंग है मन में, हर समय नेगेटिव, तो मन की स्पीड बहुत तेज चली जाएगी, और उसका परिणाम क्या होगा वो भी जानते हैं, केओस, क्योंकि एक्सीडेंट होगा, डेथ, सोरो, ये सारी रिजल्ट होगी क्योंकि स्पीड बहुत तेज कर दिया। परंतु अगर मन में सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो मन बहुत शक्तिशाली बन सकता है। ये उसका आपका अलग आपका विषय भी है आज दिन में। इसीलिए कोई अगर शिकायत करता है कि मेरा मन बहुत स्पीडी है, अपने मन के विचारों को चेक करें कि क्यों स्पीडी है, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी बहुत है। और फिर कई कहते हैं मन तो हाँ, इसके लिए तो क्या आसन लगाने पड़ेंगे। हम कहते हैं आसन की भी कोई जरूरत नहीं, पद्म जैसा जीवन बनाओ, शीर्षासन अर्थात सिर का बैलेंस रखो, हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच में परिवर्तन लाओ, यही आपको बताया जा रहा है यहाँ। तो इसीलिए आसन उस रूप के न कर सको कोई जरूरत नहीं है, मन की स्थिति हमारी ऊंची चाहिए। फिर कई कहते हैं क्या इस हम जहाँ रहते हैं वहां का वातावरण बहुत आवाज का है, हम मेडिटेशन कैसे करेंगे, कहाँ एकांत हमें मिलेगी, बहुत शोरगुल होता हमारे घर के पास या हमारे दफ्तर के पास या जहां भी है, मेडिटेशन नहीं कर सकते, आवाज बहुत है। हम कहते हैं मेडिटेशन के लिए आवाज विघ्न नहीं है। कई बार आप अनुभव करते होंगे आप किसी गहरी सोच में हैं, बहुत गहरी सोच में हैं और आवाज हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, क्या क्या कोई आपसे भी बात करने के लिए आ जाता है, पर आप किसी गहरी सोच में हैं तो आपको वो आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपसे कोई बात करने आएगा तो भी आप सुन नहीं सकेंगे क्योंकि आप तो कुछ और बातें सोच रहे हैं, और वो कहेगा मैंने आपसे ये बात की, आप कहेंगे सॉरी मैं जरा कुछ सोच रहा था। तो इसीलिए जब हमारी सोच कुछ और है ये बाहर की आवाज हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो ये भी बहाना नहीं चल सकता कि आवाज बहुत है इसलिए मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता। फिर कोई कहते हैं इसमें आंखें बंद करनी होती है, हम कहते हैं आंखें भी बंद नहीं करो भले, क्योंकि ये योग हमें कर्म योग भी सिखाता है, कर्म करते योग करना है। अब कर्म करते योग करना है तो आंखें बंद की तो कर्म कैसे होगा, कर्म के लिए आंखें तो खुली चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं भले आंखें भी खुली हो, कई बार आंखें खुली होती है आप गहरे चिंतन में होते हैं, यानी कि आंखें बंद कर रहे हैं और तब गहरा चिंतन हो सकता है, तो भी आप नहीं देख रहे हैं क्योंकि आपकी मन की आंख तो कुछ और देख रही है। इसीलिए ये भी नहीं कि आंखें बंद करनी होगी, क्योंकि कहां तक बंद करेंगे, आंखें तो बंद तब करनी होती है जब नींद आती है ना, अपने आप आंखें बंद हो जाती है नींद आती है, और आंखें बंद करना माना ब्रेन को एक संकेत मिलेगा कि अभी सोना है। कई बार छोटे बच्चों को मां सुलाती है, अब बच्चा सोता नहीं है जा आंखें खुली है, तो मां जानबूझ करके भी उसकी आंखें बंद करेंगी, बेटा सो जाओ आंखें बंद करेगी, कि आंखें बंद करेगा तो नींद आएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। इसी प्रकार आंखें बंद किया माना एक भ्रम पैदा होगा, क्योंकि राजयोग न भी हो निद्रा योग जरूर हो सकता है, निद्रा योग में भी शांति मिलती है नींद, लेकिन हम सोच रहे हैं हम योग में हैं, और फिर हम उनसे पूछते हैं आपने क्या अनुभव किया, वो कहेंगे बहन जी बहुत शांति मिली, बहुत शांति मिली, लेकिन वो योग की शांति नहीं थी, वो नींद की शांति थी, क्योंकि नींद में भी शांति मिलती है। पर अगर योग की वो शांति हो तो शांति अकेली नहीं आती है, शांति के साथ सुख भी आएगा, खुशी भी आएगी, प्रेम भी आएगा, परमात्मा के साथ वो आनंद का अनुभव, परमानंद का भी अनुभव करेंगे, ये सारे जो आत्मा के गुण हैं वो भी अनुभव होंगे, केवल शांति नहीं होगी। इसीलिए कई बार हम धोखा खा लेते हैं, समझते हैं कि हमें तो बहुत शांति मिली। हाँ ये जरूर है कोई इंसोम्निया का पेशेंट हो ना, नींद नहीं आती है, तो हम कभी नहीं एडवाइस करते कि कोई गोली खा के नींद करो, स्लीपिंग टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं है, रात को इतनी अच्छी मेडिटेशन करो, वो मेडिटेशन करने से जो मन को शांति मिलेगी आपको इतनी अच्छी नींद आ जाएगी जो कोई गोली खाने की भी जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को मेडिटेशन करने लिए सलाह दें तो नींद की गोली नहीं देनी पड़े इस पेशेंट्स को, परंतु वो डॉक्टर्स खुद सीखे तब तो पेशेंट्स को भी सिखा सके। तो इसीलिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाती एक नेचुरल रूप में, दैट्स अनदर थिंग, पर जानबूझ करके हट करके हमें आंखें बंद करनी है ये भी जरूरी नहीं है। फिर कई कहते हैं इसमें तो श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है, हम कहते हैं श्वास तो एक नेचुरल चीज है, अगर आपकी लंग्स ठीक है नॉर्मल है तो श्वास तो अच्छी अपने आप चलते हैं, प्राणायाम करते समय चलो श्वास पर ध्यान देते, लेकिन राजयोग मेडिटेशन के लिए श्वास पर ध्यान देने की जरूरत नहीं. लेट इट बी नेचुरल. और जब मेडिटेशन करते हैं अवर ब्रीदिंग इज लोअर्ड, ज्यादा हाई ब्रीदिंग भी अच्छी नहीं है एक्चुअली. पता चलता है ना कि अस्थमा है तो ब्रीदिंग भी कैसी होती है. तो इसीलिए नॉर्मल है और मन की स्थिति भी नॉर्मल है. लेट अस नॉट यू नो एग्जैजरेट अ लॉट. फिर कई कहते हैं कि ठीक है हम ध्यान इस पर ध्यान तो करते हैं, लेकिन ये अच्छा तो लगता है लेकिन जल्दी बोर हो जाते हैं. कई कहते हैं हम बोर हो जाते हैं. हम कहते हैं क्यों बोर होते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं लाते हैं मन में. अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो आपको कभी नींद नहीं आएगी. आपके अंदर में जैसे कोई कमाई कर रहे हैं तो कभी नींद नहीं आएगी. बिजनेसमैन हम देखते हैं ना, रात रात को भी दुकान पर बैठते हैं, नींद नहीं आती है. क्यों नहीं नींद आती? क्योंकि ग्राहक आते हैं तो नींद कैसे आएगी. कई बार ग्राहक नहीं है तो झुटके खाते रहेंगे क्योंकि काम नहीं है, नींद ग्राहक ही नहीं है. परंतु अगर ग्राहक आ रहे हैं, कुछ कमाई हो रही है, तो नींद नहीं आती है. भूख भी मर जाती है क्योंकि कमाई हो रही है. अब वो तो स्थूल कमाई है और ये अंतर की कमाई है, सच्ची कमाई जो आत्मा के साथ चलेगी. इसीलिए बोर होने का तो प्रश्न ही नहीं है. और कई बार क्या करते हैं, केवल एक मंत्र दे देते हैं कि ये मंत्र आप जाप करना. तो क्या होता है कि जाप करने लिए गिनती भी देते हैं कि सारे दिन में 1,00,000 बार ये मंत्र जाप करना है. बीच बीच में जाप करते रहो. अब बीच बीच में जाप करना, चलो 1,00,000 बार सारे दिन में जाप करना है, तो जो जाप कर रहे हैं जो उस वाक्य का अर्थ है उसमें तो टिकते नहीं है, लेकिन गिनती जरूर याद रहती है कितनी गिनती हो चुकी है, कितनी बाकी है. जैसे मान लीजिए किसी को कहा जाए ओम नमो शिवाय का जाप करें. अब 1,00,000 बार ओम नमो शिवाय का जाप करना है तो चलो एक टाइम पर 1,000 करेंगे. 1,000, 1,00,000 माना 100,000. तो 100 बार सारे दिन में वो जाप करना है. तो गिनते रहेंगे, अभी 50 हुआ, अभी 60 हुआ, अभी फिर 1,000 में भी गिनेंगे अभी कितना हुआ. तो शिव के साथ तो योग लगा ही नहीं, योग लगा गिनती के साथ. अब या तो हमें शिव के साथ योग लगाना है. ओम नमो शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूं. ओम नमः शिवाय, मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूं. तो मैं शिव को नमस्कार करने वाला कौन? आत्मा. अगर हम ईगो में हैं, देह के अभिमान में हैं, नाम रूप धर्म जाति भाषा ऑक्यूपेशन इसी का अभिमान है, तो शिव को नमस्कार नहीं होगा. और दूसरा, जिस शिव को हम नमस्कार कर रहे हैं उसको, उसके साथ मेरा संबंध क्या है, मुझे क्या प्राप्ति होगी, कैसे मिल सकूंगा. अगर ये कुछ भी पता नहीं है तो ये मंत्र सार्थक भी कैसे होगा. इसीलिए बोर हो जाते कि एक तो क्रिएटिविटी नहीं है और उसी चीज को रिपीट 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 करेंगे तो नेचुरली बोर हो जाएगा. मन को तो क्रिएटिविटी चाहिए. छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों को कैसे माँ कंट्रोल करती है. अगर मान लो बहुत चंचल है तो चंचल बच्चे को छोड़ भी नहीं सकती है, चंचल बच्चे को बांध भी नहीं सकती है, क्योंकि बांधेगी तो उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, मारती रहेगी तो भी रचनात्मकता खत्म हो जाएगी, और छोड़ देगी तो भी बच्चा नाक में दम कर देगा. तो समझदार माँ जो होती है वो मारती भी नहीं है, उसको छोड़ती भी नहीं है, लेकिन क्या करती है, उस बच्चे को काम दे देती है. हाँ बच्चे ये पेंसिल से ड्राइंग करो, ये करो. आजकल बड़े सुंदर क्रिएटिव गेम्स आते हैं, वो तोड़ो जोड़ो नया बनाओ और करो. अब बच्चा उसमें बिजी हो जाता है. तो बिजी हो जाने के कारण वो चंचल भी नहीं होता और साथ साथ उसकी क्रिएटिविटी भी बनी रहती है। तो मन भी एक बच्चे की तरह है, बच्चे के ऊपर माँ का ध्यान हर वक्त है, तो मन के ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि मन को हर वक्त एक नई दिशा देती रहे, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, किसके बारे में सोचना है। तो केवल एक मंत्र जाप नहीं है, मंत्र जाप तो रटा रटाया है तो बोर हो जाएंगे, इसलिए मंत्र शब्द का भी अर्थ है। मंत्र शब्द कहां से आया, जैसे योग शब्द युज से आया, मंत्र शब्द मंत्रणा से आया। संस्कृत में मंत्रणा का अर्थ होता है कोई एडवाइस, राय, सलाह। एडवाइजर टू द किंग पहले जमाने में होते थे, उनको मंत्री कहते थे। तो मंत्र माना जो राय दी जाए, और जो देने वाला राय है उसको मंत्री कहते थे, और आपस में राय विचार विमर्श करते उनको मंत्रणा कहते हैं। तो मंत्र माना बुद्धि द्वारा मन को एक ऐसी सलाह दी जाए, राय दी जाए, और उस सलाह पर मन चले, ये है मंत्र। और दूसरा मंत्र माना जिससे मंत्र हो, त्र का मतलब है, त्र के भी कई अर्थ है। त्र माना तृप्ति, संतुष्टता, भरपूरता, ऐसे विचार मन में चले जो सचमुच मन इतना भरपूर हो जाए, तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, वो चिंतन इतना ऊंचा चले, ये है वास्तव में मंत्र का सही अर्थ। तो इसलिए बोर होने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि इतनी क्रिएटिविटी मन में आती है, और ही रचनात्मकता बढ़ने से हमारी बुद्धि भी विशाल बन जाती है, और कितनी सारी प्राप्तियां जीवन में आती है। और कई फिर जब बोर हो गए तो कहते बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। अब मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर सरल शब्दों में हम राजयोग का अर्थ लें तो वो है स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना, ये राजयोग मेडिटेशन है। याद, पन एम्फेसिस ऑन द वर्ड याद, रिमेम्बरेंस। याद भी एक योग है, कई बार हम किसी व्यक्ति को बहुत याद करते हैं और अचानक वो व्यक्ति पहुंच जाता है, मान लीजिए हमने उसको याद किया, उसके बारे में हम कुछ वर्णन कर रहे थे, उसकी बातें हम एक दो को सुना रहे थे, और कहते थे काश अगर वो इस समय हम वो आ जाता कितना अच्छा होता, मान लो, और उसी वक्त वो पहुंच जाता है, और जैसे ही पहुंच जाता है हम उनको कहते अरे क्या क्या योग था मेरा, क्या योग था मेरा, अभी अभी आपको याद किया आप आ गए। तो योग क्या है, एक याद है। तो राजयोग भी उस सर्वोच्च परमात्मा की याद है, परंतु उसका सही रूप समझना होगा, कैसे याद करें, अब ये विधि जरूर है। इसलिए परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना, ये राजयोग मेडिटेशन है। अब उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे तो जैसे आपको कल बताया कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों का मिलन ये राजयोग है। तो पहला कदम है आत्मा की पहचान, दूसरा कदम है परमात्मा की पहचान, और तीसरा कदम है कि मन की जो चंचलता है उसको हम धीरे धीरे कैसे कम करते जाएं, श्रेष्ठ सुंदर विचार मन में लाएं। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब धीरे धीरे कैसे ये परिवर्तन करेंगे, बहुत सिंपल है। अब जैसे बच्चा समझता है मैं किसका बच्चा हूं, ये भूल थोड़ी सकता है, बच्चे को याद रहता है मैं किसका बच्चा हूं। हाँ ये भी है कि बच्चे को पहले पता नहीं है, पर पिता उसको अपनी पहचान देता है कि बेटा तुम मेरे बेटे हो, मेरा बेटा हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो हम आत्माएं भी खुद को नहीं जानती थी, अब परमात्मा ने ही अपनी भी पहचान दी है और हमारी भी पहचान दी है। और ये भी हम जानते हैं मनुष्य का पिता तो मनुष्य ही होगा, अब आत्मा का पिता कौन होगा? परमात्मा होगा। तो आत्मा एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, चमकता हुआ एक सितारा है। परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु है, पर गुणों में वो सिंधु है। हम आत्माएं अपने गुणों को भूल जाती है क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन परमात्मा तो सदा ही उन गुणों का सागर है। उनके इसलिए कहेंगे सदा शांति का सागर है, सदा प्रेम का सागर है, सदा सुख का सागर है। और हम आत्माएं भी वो गुणों के स्वरूप हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। ये भूल भुलैया का खेल इस संसार में आके भूल जाते हैं। इसलिए परमात्मा को हमें फिर से याद दिलाना पड़ता है। अब आप देखेंगे चाहे कोई कितना भी कहे कि मेरा मन तो बहुत चंचल है, बहुत मन में विचार आते हैं, फिर भी अगर हम इसको थोड़ी साइकोलॉजी दें, साइकोलॉजी के अनुसार मन कहाँ कहाँ जाता है, कभी ये सोचा आपने मन आखिर जाता कहाँ है? दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, क्या सभी तरफ मन जाता है? कभी नहीं। हम जिनको जानते ही नहीं है तो मन कैसे जाएगा वहां? इसलिए पहला कदम मन को कहीं भी जाने का है वो है उसका परिचय। हम ट्रेन में सफर करते हैं, प्लेन में सफर करते हैं, तो जो मेरे पास बैठा होगा, फ्री बैठे हैं, तो हम उनसे कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देंगे। और कैसे करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपका क्या नाम है, तो परिचय लेना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे परिचय लेते जाते हैं थोड़ा नजदीक आते हैं, नहीं तो बात क्या करेंगे, परिचय ही लेते हैं पहले पहले, क्योंकि पहले तो जानते नहीं। तो मन को कहीं भी जाने का पहला आधार होता है परिचय। फिर परिचय लेते लेते अगर ये पता चल जाता है कि इनके साथ कोई मेरा संबंध है, संबंध भी कई प्रकार का होता है, कई बार ऑक्यूपेशन भी एक संबंध है, आप डॉक्टर हैं और आपके पास जो बैठा है वो भी एक डॉक्टर है, तो बात शुरू हो जाएगी, दोनों ही डॉक्टर्स हैं क्योंकि सेम ऑक्यूपेशन। फिर पता चलता है कि आपने एक ही कॉलेज से एग्जामिनेशन दिया था और संबंध निकट होगा, एक ही कॉलेज में हम पढ़े थे। फिर पता चलता है कि अरे वो हम तो उसी बैच के हैं, हम भी उसी साल पास हुए थे, आप भी उसी साल पास हो, और संबंध बढ़ेगा। धीरे धीरे कैसे संबंध बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे सिमिलैरिटी समानता सुनते रहते हैं संबंध बढ़ता रहता है। तो संबंध एक दूसरा कदम है मन को कहीं भी जाने का। अब संबंध जैसे बढ़ा धीरे धीरे उनके गुणों तरफ भी ध्यान जाएगा, तो गुणों तरफ ध्यान गया तो धीरे धीरे स्नेह भी बढ़ेगा, क्योंकि जहां गुण दिखाई देंगे वहां स्नेह अनुभव होगा। ये भी एक साइकोलॉजी है, ये भी एक कला है। जहां अवगुण दिखाई देते हैं वहां नफरत आएगी, रिपल्शन होगा, जहां गुण दिखाई देंगे वहां अट्रैक्शन होगा। इसीलिए प्रकृति में अपोजिट है, प्रकृति में हम क्या कहते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, नॉर्थ अट्रैक्ट साउथ, साउथ अट्रैक्ट नॉर्थ, साउथ एंड साउथ विल रिपेल, नॉर्थ एंड नॉर्थ विल रिपेल। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिक स्थिति में, लाइकनेस अट्रैक्ट्स, समान विचार, समान संस्कार, समान स्वभाव, जहां ये संस्कार विचार स्वभाव कर्म समान है वो समान आकर्षित करते हैं, लाइकनेस अट्रैक्ट्स। इसलिए कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, समानता का आकर्षण होता है, इसलिए परिवारों में भी हम देखते हैं पति पत्नी सब जो संबंध जोड़ना है तो माता पिता ज्योतिषी के पास जाते हैं और कहते जरा इनकी जन्म पत्री देखो, इनका विवाह करना है तो जरा देखो इनका योग है, वहां योग है ये पूछा जाता है। योग होना माना समान संस्कार, समान विचार, समान गुण, कुछ कुंडली में कुछ समानता होनी चाहिए, कुछ मैचिंग होना चाहिए। अगर कुंडली में बहुत विरोधाभास है, नो मैचिंग, तो कहेंगे योग नहीं है। तो योग होने लिए मैचिंग चाहिए, तभी वो स्नेह बढ़ता है, तभी वो संबंध और स्नेह से हम आगे बढ़ते हैं। और चौथा आधार मन को कहीं भी जाने का है, वो है प्राप्ति। कुछ प्राप्ति हो गई तो मन तो वहां से हटेगा ही नहीं। अब ये जीवन में ये चार आधार होते हैं मन को कहीं भी ले जाने के लिए। अब हम ये चारों आधार परमात्मा से जोड़े, आत्मा और परमात्मा की पहचान, ये राजयोग का पहला आधार है। और वो आधार आपको कल सुनाया, आत्मा की भी पहचान दी, परमात्मा की भी पहचान दी। अब दूसरा आधार है संबंध, और तीसरा आधार है स्नेह, परमात्मा से अटूट स्नेह संबंध के आधार पर, और चौथा है उनसे प्राप्ति। अब जहां संबंध की बात आती है, भले हम वर्णन करते हैं परमात्मा हमारे माता पिता बंधु सखा सब संबंध है, लेकिन वो संबंध का अनुभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संबंध कहीं टूट गया है। संबंध जुड़े तो अनुभव हो ना, जैसे यहाँ बिजली जल रही है, लाइट जल रहा है, माइक सब ये सब जल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अचानक बिजली घर से कनेक्शन टूट जाए, बिजली बंद हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, शक्ति खत्म। तो आत्मा भी आज शक्तिहीन क्यों बन गई है? क्योंकि परमात्मा से संबंध टूट चुका है। फिर भिखारी बनकर के भगवान से शक्ति मांगती भी है, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, शक्ति की भीख मांग रही है। क्या बच्चे को अपने पिता से भीख मांगनी पड़ती है? बच्चा तो अधिकारी होता है, भिखारी थोड़ी है जो पिता से भीख मांगे। लेकिन हम आज भिखारी बन गए हैं, परमात्मा से शक्ति मांगते हैं। एक और गीत है, तू प्यार का सागर, तेरी बूंद के प्यासी हम। भगवान कहते बूंद के प्यासी क्यों बनते हो? सागर है तो पूरा ही पी जाओ, सागर मना करेगा क्या? कोई सागर के किनारे जाए और छोटी सी कटोरी ले जाए या चुल्लू भर पानी ले ले, सागर तो खुला है, जितना चाहिए लो। कोई सूरज से कहे बस सूरज मुझे एक ही किरण दो, सूरज तो भरपूर प्रकाश दे रहा है, लेकिन अपने बस खिड़की दरवाजे खुले रखो, क्यों नहीं सूरज की रोशनी आएगी? इसीलिए कहा जाता है अज्ञान का पट, अज्ञान का पर्दा हटाओ। तो अज्ञान का पर्दा हटाना माना ये देह जो अभिमान है इसको हटाओ और आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ो। तो अगर मान लीजिए अगर बिजली नहीं है तो क्या कारण है? दूसरी जगह बिजली है, यहाँ क्यों नहीं है? तो कहेंगे भी जरा अपना मेन जो मीटर है ना उसमें चेक करो, कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया। कि पूछे कि ना फ्यूज देखो, फ्यूज उड़ गया होगा, वो फ्यूज को फिर से जोड़ना है। तो आत्मा का परमात्मा से जो अनादि अविनाशी संबंध है वो टूट चुका है, इसलिए वो शक्ति की अनुभूति नहीं होती है। अब वो फ्यूज को फिर से जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे वो भी देखेंगे। और फिर तीसरा है स्नेह। आज जो परमात्मा के साथ अगर हमारा संबंध है भी ना, वो स्नेह का संबंध नहीं है, वो स्वार्थ का संबंध है, स्वार्थ का संबंध है। जब कोई आवश्यकता पड़ी, हे भगवान, और कुछ नहीं चाहिए तो भगवान भगवान सब भूल गया। कोई तो केवल नियम अनुसार बस थोड़ा बहुत पूजा की, चलो पूरा हो गया। वो स्नेह का संबंध तो बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसी में सारी प्राप्ति है। अब ये चारों बातें जो आधार रूप में है, वो परमात्मा में कैसे अनुभव करें? तो जैसे हमने आपको आत्मा का परिचय दिया कि मैं आत्मा एक ज्योति हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, आत्मा वास्तव में ये सातों गुणों का स्वरूप है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, इसका बहुत विस्तार है, उस विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन ये कोर वैल्यूज है, हर आत्मा में ये निहित है, ये गुण कहीं और से लेने नहीं है। जैसे प्रकृति में हम देखते हैं, हर एक तत्व का अपना गुण होता है, उसका अपना स्वभाव होता है। जैसे अग्नि का स्वभाव तेज है, प्रकाश है, ये उसका स्वभाव है। अगर प्रकाश और तेज नहीं तो अग्नि काहे की। इसी प्रकार जल का स्वभाव, पानी का स्वभाव शीतलता होता है, शीतल। अगर शीतल नहीं है वो फिर स्टीम कहलाएगा, हाँ वो भले पानी है पर उसमें आग का समावेश है, और आग हटाओ तो जल वापस अपना शीतल स्वभाव ले आएगा। तो जो चीज उसका स्वाभाविक गुण है, वो गुण उसको बाहर से नहीं लेना है, वो अपने अंदर ही है उसका वो गुण। बाहर से जो आया ये पराया स्वभाव है। इसी प्रकार अगर हम दुख और अशांति, कलह, क्लेश, पाप आदि ये जो भी अनुभव कर रहे हैं, ये सब बे अभिमान के कारण है। अब पहचानो अपने आप को, आप कौन हो। तो जैसे मुझे आत्मा का परिचय मिला तो मैं कहाँ हूँ आत्मा इस शरीर में, तो पता चला मैं तो प्रकृति के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ। अब ये मेरी एक टेम्पररी एड्रेस है, ये परमानेंट एड्रेस नहीं है, क्योंकि ये शरीर में केवल एड्रेस है। मेरी जो परमानेंट एड्रेस है वो तो परम धाम है, शांति धाम है, मुक्ति धाम है। जब मन अशांत हो जाता है तो हम भगवान को क्यों कहते हैं, हे भगवान उठा लो, क्योंकि आत्मा होमसिक हो जाती है। होमसिक, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से बहुत समय टूर पर रहता है, बहुत बाहर है घर से, तो धीरे धीरे वो होमसिक हो जाएगा। घर बहुत याद आता है, कब मैं घर पहुंचूंगा। एक महीने का टूर होगा, 15 दिन के बाद हम अपना काउंट डाउन शुरू करते हैं, अभी 14 दिन, अभी 13 दिन, 12 दिन, अभी 2 दिन, अभी 1 दिन, बस अभी आज मैं निकल रहा हूँ, अभी पहुंचना है। और हम तो देखते एयरपोर्ट पर ट्रेन, वो प्लेन लैंड हुआ, अभी लैंड हुआ ही नहीं है, अभी केवल केवल टच हुआ, उसी समय सबके मोबाइल ऑन होने जाते हैं, बस मैं पहुंच गया, एयरपोर्ट पहुंच गया। घर कितना याद आता है। अब जैसे ये घर इतना याद आता है, आत्मा को अपना जो परम धाम है वो भी याद आता है। इसीलिए आत्मा होमसिक हो जाती है, शांति के लिए पुकारती है, और कहती कई बार दुखी होके इस दुनिया में, भगवान बस उठा लो, क्योंकि होमसिक हो गई। हम कहते हैं होमसिक मत हो जाओ, वो आपका घर है, आप मन से चले जाओ एक सेकंड में। तो आत्मा को अपने घर की पूरी पहचान हो, और इस क्यों आए इस दुनिया में, इस दुनिया में आने का मकसद, ये लक्ष्य पता हो, तो हम सहज न्यारे भी बन सकेंगे और परमात्मा में अपना मन भी लगा सकेंगे। तो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी एक ज्योति है, लाइकनेस है, एक जैसे हैं। आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ये आंखें नहीं देख सकती है, लेकिन दिव्य दृष्टि से हम साक्षात्कार करते हैं, और दोनों ज्योति स्वरूप है। अब आत्मा का हुआ या परमात्मा का हुआ तुरंत पता नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों ही ज्योति स्वरूप है। There's likeness in form. फिर दूसरा, परमात्मा और आत्मा के गुणों में भी likeness है. जो आत्मा के गुण हैं, वो परमात्मा के भी वही गुण हैं. So likeness in form, likeness in qualities. फिर likeness even in your home. एक ही घर है, आत्मा और परमात्मा का address वही है. अब जब ये बातें हम समझे, तब हम परमात्मा में अपना मन लगा सकते हैं और परमात्मा के क्या कर्तव्य हैं वो भी हम जाने, और वास्तव में जो उनके कर्तव्य वो हमारे भी कर्तव्य हैं. अब इसको और डिटेल में समझना होगा. तो जो संबंध टूट चुका है वो संबंध को जोड़ना होगा. कैसे जोड़ेंगे? जैसे ट्यूनिंग करके हम संबंध जोड़ते हैं ना रेडियो स्टेशन से, रबर हटा करके तांबे की तार को तांबे से जोड़ते हैं, कॉपर टू कॉपर, तब वो गुड कंडक्टर बनता है और बिजली मिलती है. रबर को हटाना पड़ता है, रबर इज अ बैड कंडक्टर. इसी प्रकार ये देह का अभिमान बैड कंडक्टर है, ये परमात्मा की शक्ति अनुभव करने नहीं देगा, न आत्मा की शक्ति अनुभव करने देगा. तो राजयोग वो चार्जर का काम करता है, जो आत्मा की बैटरी को चार्ज करता है उस पावर हाउस से. ये देह अभिमान को तोड़ना होगा. तो तीन प्रकार की समानताओं को हमें समझ करके कनेक्शन जोड़ना होगा. और वो तीन प्रकार की समानता बताई, एक स्वरूप की समानता, दूसरा निवास स्थान की समानता और तीसरा गुणों की समानता. अब इसका चिंतन करना होगा. मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, मैं आत्मा शांति धाम की वासी हूँ, परमात्मा भी शांति धाम के वासी है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा शांति के सागर है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, परमात्मा प्रेम के सागर है. अब ये चिंतन, यही वास्तव में मंत्र है. ये चिंतन करने से आत्मा परमात्मा के निकट आएगी, और जैसे निकट आई हम महसूस करते हैं कि परमात्मा से वो शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है. तो चार स्टेजेस हैं इस राजयोग के अंतर्गत में. पहली स्टेज है आत्मा और परमात्मा का चिंतन. दूसरी स्टेज है परमात्मा से रू रिहान, अंतरी अंतर आत्मा परमात्मा से बातें करना शुरू कर देती है. जैसे कनेक्शन जुड़ गया, कनेक्शन जुड़ गया, आपका डायलॉग शुरू हो गया. फिर जैसे ये डायलॉग आगे बढ़ता है हम उसके प्रेम में खो जाते हैं. जैसे टेलीफोन पर बात करते करते अनुभव करते होंगे, अब वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता है जिससे हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम इतने उसमें खो जाते हैं, मुस्कुराएंगे भी, हंसेंगे भी या रोएंगे भी, इमोशंस हम अपने उस समय प्रकट करते हैं, दिखाई नहीं देता कुछ भी, लेकिन केवल सुन रहे हैं वो इमोशंस प्रकट होते जाते हैं. और चौथा, फिर उसी के आधार से तीसरे में हम वो एकाग्रता की अनुभूति करते रहेंगे, जैसे उसमें खो गए. और चौथा है अनुभूति, खो गए और उस गुण को अपने अंदर समा लिया. कई समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, हम कहते अंश नहीं, लेकिन परमात्मा के जो भी गुण हैं वो आत्मा के अंदर भी अंश रूप में है, इसीलिए आत्मा सो परमात्मा कह दिया या अंश कह दिया. तो है सारी गुणों की बात. आत्मा सो परमात्मा कहना माना वास्तव में हम एक ही घर के रहने वाले हैं, एड्रेस वही है, स्वरूप एक जैसा है, गुण एक जैसे हैं, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, क्वांटिटी में फर्क जरूर है. तो क्वालिटी इज द सेम. परमात्मा शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप हूं. तो एज क्वालिटी इज द सेम, क्वांटिटी में अंतर है तो मैं अधिकारी बन करके उसको अनुभव कर सकती हूँ। इसलिए ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हे प्रभु मुझे शांति दो, शांति मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कहना होगा, शिव पिता संबंध जोड़ो, मेरा पिता है वो, शिव पिता आप शांति के सागर हो और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं, मैं हूं। हम स्वार्थ के वश होकर के भगवान से मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, धन मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, मकान मांगते हैं, कई अगर कोई नौकरी नहीं है तो नौकरी भी मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं भगवान से। इस संसार की जो अल्प चीजें हैं वो भी भगवान से मांगते हैं। भगवान हमें कहते हैं, हे बच्चे मैं तो तुमको इतना दे सकता हूँ जो तुम सारे विश्व के भी मालिक बन सकते हो, केवल मुझे पहचानो। एक छोटा बच्चा होगा उसको क्या पता मेरे पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो तो पिता को यही कहेगा, पिताजी डैडी मुझे ये टॉय लाके दो, ये खिलौना लाके दो, मुझे पेंसिल लाके दो, मुझे ये चीज लाके दो। अरे पिता तो उसको पता नहीं क्या क्या दे सकता है, बच्चे के लिए ही तो पिता के पास प्रॉपर्टी है। किसके लिए है पिता के पास प्रॉपर्टी, बच्चों के लिए। पिता क्यों कमाता है, बच्चों के लिए। तो परमात्मा जो इतना गुणों का सागर है किसके लिए है, हमारे लिए। कहो नशे से, किसके लिए है, हमारे लिए। तो इसीलिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, हम अधिकारी हैं। लेकिन अधिकारी होने के लिए लायक भी बनना पड़ेगा, ऐसे अधिकार नहीं मिलेगा, लायक बनना पड़ेगा। तो परमात्मा हमें कहते कोई भी भीख मत मांगो, वस्तु तो कभी नहीं मांगो। आप ये सोचो हम कितना भी भगवान से मांगते हैं, परंतु उन लोगों का भी सोचो जिनके पास जितना हमारे पास है उतना भी नसीब नहीं है। Why should we be selfish? इसीलिए जो संसार की चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, उनमें संतुष्ट रहो, उनके पीछे मत दौड़ो, और संतुष्ट रह करके परमात्मा को धन्यवाद करो तो प्रेम जगेगा कि परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। अंतर सेटिस्फेक्शन होगा तो शांति होगी, खुशी होगी। अगर स्वार्थ होगा तो कभी खुशी नहीं होगी, कभी शांति नहीं होगी, जितना है उसका भी सुख नहीं ले सकेंगे। इसीलिए वस्तुएं तो कभी नहीं मांगो भगवान से। तो कई कहते हैं ठीक है हम भगवान से कोई वस्तु नहीं मांगते हैं, पर शांति तो मांगे, खुशी तो मांगे, प्यार तो मांगे। अब परमात्मा कहते ये भी मांगने की जरूरत नहीं, तो आपका अधिकार है, आप हो ही वही गुण स्वरूप, तो मांगने की क्या बात है। इसलिए ये भी मांगना नहीं है, स्थूल वस्तुओं के लिए धन्यवाद करो कि परमात्मा ने आपको लायक समझा इसलिए ये दिया है। वैसे भी हम भक्ति में यही गाते आए ना, आरती जब करते तो क्या कहते हैं, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, अर्पण क्या लागे मेरा। ये तन भी ईश्वर का है, मन भी ईश्वर का है, धन भी ईश्वर का है, सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। तो आपको भगवान ने ये दिया है, अमानत समझ करके उसको यूज करो, भगवान की वो अमानत है, और मत मांगो, जो है उसमें संतुष्ट रह करके धन्यवाद करो, भगवान ने आपको लायक समझा इसके लिए। इसीलिए कहा जाता है भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता। बी हैप्पी, हैप्पीनेस इज योर ग्रेटेस्ट क्वालिटी। तो जब हम ये महसूस करते हैं तो लगता है कि सचमुच भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है। तो वस्तु भी नहीं मांगनी, उसकी बजाय धन्यवाद करो। गुण भी नहीं मांगनी है, उसकी बजाय अधिकार रखो। कैसे रखेंगे अधिकार, शिव पिता आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तीन बार ओम शांति कहा, तीन बार का मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम का वासी हूँ और शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। तो जिसका स्वभाव शांति, जिसका धाम शांति का धाम, जिसका पिता शांति का सागर, अगर वो कहता है मैं अशांत हूँ, ये कितना बड़ा अज्ञान है। इसीलिए ओम शांति 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 का मतलब अपने मूल स्वभाव को पहचान लो। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम का वासी, शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप। इसलिए गुण भी मांगने की जरूरत नहीं। कई फिर क्या करते, चलो ना गुण मांगेंगे ना कोई चीज मांगेंगे, लेकिन तीसरी चीज मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कोई ऐसी कोई कड़ी भूल की है, कोई ऐसा पाप किया है, तो भगवान के आगे जाकर कहेंगे भगवान मुझे माफ कर दो, क्योंकि अंदर में मन तो खाता है ना, और पता है कि मैंने ये इतनी बड़ी भूल की है, मुझे सजा जरूर मिलेगी। तो सजा का डर के होने के कारण भगवान से माफी मांगता है। लेकिन होता क्या है, माफी तो मांग ली पर माफी मांग के फिर वही भूल करता है। तो माफी मांगना कौन क्या हुआ, मांगे ना न मांगे बराबर है, क्योंकि फिर वही भूल करता है। एक छोटा बच्चे ने गलती की और मम्मी को कहता है मम्मी सॉरी डैडी सॉरी। अब बच्चा बार बार सॉरी करता रहे और बार बार वही भूल करता रहे, तो माँ बाप कब तक उसको माफ करेंगे? बे सॉरी सॉरी करते तो बदलो भी तो सही ना, चेंज योर सेल्फ। अब परमात्मा भी कहते हैं माफी केवल मांगो नहीं पर अपने आप को परिवर्तन करो। और कैसे परिवर्तन करेंगे, वो शक्ति कहाँ से लाएंगे? वो शक्ति लेने के लिए आप परमात्मा से प्रतिज्ञा करो। एक प्रतिज्ञा से शक्ति आती है, प्लेज करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, वाउज लेते हैं, संकल्प लेते हैं, व्रत रखते हैं, ये सब अंतर की प्रतिज्ञा का ही अलग स्वरूप है। परमात्मा से प्रतिज्ञा हो कि ये भूल फिर मैं कभी नहीं करूंगा। अब हो गई वो तो हो गई, माफी मांगने से भी जो कर्म किया उसका फल तो मिलेगा ही, पर हाँ इतनी शक्ति जरूर मिलेगी जो उसकी सजा आप इतनी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि शक्ति अंतर में आपको मिली, माफी तो मांगी लेकिन साथ में अगर प्रतिज्ञा की तो वो शक्ति आपको इतनी मदद करेगी जो फिर वो भूल कभी नहीं होगी। भले इतनी बड़ी भूल एक बार कर भी ले, हो सकता है वो माफ भी हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति, किसी ने किसका मर्डर किया मान लो, और मर्डर किया माना हत्या की, तो हत्या का बदला उसका उसकी सजा या तो उम्र कैद है या तो फांसी है। चलो उसको उम्र कैद मिल गई, पर उम्र कैद भोगता हुआ व्यक्ति अगर जेल में बहुत बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, तो धीरे धीरे उसकी सजा कम होती जाती है। उम्र कैद बदल के 10 साल की सजा पूरी होकर के पूरा हो जाता है, छूट जाता है, क्योंकि बदल गया। तो अगर हम भी अपने अंदर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि ये भूल फिर नहीं करेंगे और सच बता दिया ईश्वर को, तो हो सकता है वो क्षमा हो भी जाए। लेकिन हम क्या भूल करते हैं दूसरी, कि भूल करने के बाद छिपाते हैं, छिपाते हैं, भगवान से भी छिपाते हैं, लोगों से तो छिपाते ही हैं, भगवान से भी छिपाते हैं, क्योंकि डर लगता है। तो अगर छिपाया वो भूल बढ़ती जाएगी। होना चाहिए कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कोई वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा काम किया, नेकी कर दरिया में डाल। कई बार हम अच्छा काम करते हैं, लोग हमारी स्तुति गाते हैं, हम उनको मना करते हैं, नो नीड टू प्रेज, ये तो सब मेरा फर्ज था, दिस वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए महिमा क्या करता। तो स्वीकार नहीं करते महिमा, पर आपका पुण्य का खाता तो बन गया और उसका रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। और जितना उसको स्वीकार नहीं करेंगे आपका पुण्य ज्यादा होगा, और स्वीकार की महिमा तो पुण्य कम होता जाएगा। ये कर्म की बहुत बड़ी गति है। तो अगर अच्छा काम किया तो वर्णन करने की जरूरत नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल, ऐसे ही कहते हैं। नेकी और पूछ पूछ, अच्छा काम करने के लिए पूछना भी नहीं पड़ता है, करूं, करो इमीडिएटली करो, नहीं तो बाद में फिर शक्ति कम हो जाएगी। डू इट नाउ। और गलत काम करने के लिए 100 बार सोचो क्या इसका परिणाम हो सकता है, और अगर गलती हो गई तो बता दो, सच बता दो, छिपाओ नहीं। और हम लोग क्या करते, उल्टा करते हैं, गलत काम किया छिपाएंगे और अच्छा काम किया तो बढ़ा चढ़ा करके सुनाएंगे, ये किया। अब दोनों ही गलत है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं मेरे से ऐसे अंदर ही अंदर बातें करो, मैं सदा आपके साथ हूं, ये महसूस करो। ये सर्वव्यापी एक भावनात्मक स्थिति इतनी ऊंची है, कभी भी अपने को परमात्मा से अलग मत को समझो। आपके सिर के ऊपर भी छत्र छाया बन करके आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपके आगे भी है आपको गाइड कर रहा है, आपके पीछे भी है आपका गार्ड बन करके आपकी रक्षा कर रहा है, आपके साइड में भी है आपका साथी बन करके साथ चल रहा है। ये अनुभव कर सकते हो। कई लोग अपने को अकेला समझते, हम कहते कभी अकेला मत समझो, जिसका साथी भगवान है उसको दुनिया के आंधी तूफान कोई रोक नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी कोशिश करे। महसूस करो ये। इसलिए आत्मा परमात्मा का जैसे चिंतन किया उसके बाद आपका संबंध परमात्मा से जुड़ गया, वो आपका साथी बन गया, और उनसे आप अंदर की खूब बातें करो। पर ये चीज तीन नहीं करना, मांगना कुछ नहीं लेकिन धन्यवाद करना, गुणों का अधिकार रखना और प्रतिज्ञा करना, संकल्प करके अपने आप में परिवर्तन लाते जाओ और फिर देखो कैसे अनुभव होता है। तो क्या है आत्मा और परमात्मा का चिंतन? स्वयं को ज्योतिर्बिंदु आत्मा निश्चय कर वो ज्योति स्वरूप परमात्मा के नाम रूप एवं गुणों का विचार करना, संकल्प करना, यही है मंत्र। चिंतन करना, अपने आप को ये चिंतन देना है, खुद से बातें करनी है, मैं कौन हूं, मेरा पिता कौन है, और उसके बाद फिर परमात्मा से बातें करो, हर संबंध से बातें करो, मेरा पिता माता शिक्षक सतगुरु सब संबंध मेरे परमात्मा के साथ है, बहुत सुंदर अनुभव आप कर सकेंगे। तो आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत परम सत्ता के साथ सर्व संबंध से रूढ़ियान करना। तो मुख्य रूप से हम बताते हैं परमात्मा के साथ 6 मुख्य संबंध है, हर वक्त अनुभव कर सकते हो। माता पिता तो है ही, वो शिक्षक भी है, गुरु भी है, खुदा दोस्त है, वो सखा है, साजन है, परमात्मा को बच्चा भी बना सकते हो। दिखाते ना सती अनसुईया ने कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चे रूप में देखा, बच्चा भी बना सकते। ये फिर आगे के विषय है, परमात्मा से कैसे सर्व संबंध जोड़े। लेकिन उन संबंधों से आप परमात्मा से बातें कर सकते हो, जैसे अपने संबंधों से बातें करते हो आप भगवान से बातें कर सकते हो, और फिर ऐसे रूरिहान करते हैं, ऐसे लगता है कि परमात्मा तो मेरे साथ ही है, विश्वास हो उनमें, पूर्ण विश्वास, विश्वास कभी डगमगाए नहीं, हमारा स्वार्थ ही विश्वास को डगमगाता है, स्वार्थ बिल्कुल न रहे, प्रेम का संबंध हो तो कभी विश्वास डगमगाएगा नहीं। और जहां पर प्रेम है विश्वास है वहां सुरक्षा है, वहां शक्ति है, वहां भय मुक्त है। ये सब बातें हम अनुभव कर सकेंगे परमात्मा से रूरिहान करते समय, और उसके बाद हम महसूस करते हैं कि कैसे हमारा मन एकदम एकाग्र हो जाता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाती हूँ। इसी को ही शास्त्रों में लिखा है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये विलीनता की अवस्था योग की अवस्था है। अब माना जैसे बूंद सागर में समा गई, मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा गई। अशांत होकर के शांति के सागर में नहीं समा सकेंगे, समानता चाहिए समाने के लिए। जिस प्रकार पानी और तेल मिल नहीं सकता है, तो क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक डेंसिटी वो सब अलग अलग है, तो मिलेंगे कैसे? अब तक क्यों नहीं मिलन हुआ आत्मा का परमात्मा से? क्योंकि बहुत अंतर समझा। परमात्मा का तो न नाम है, न रूप है, न गुण है, कुछ भी नहीं है। और मैं फलाना नाम रूप धर्म जाति, ये सारे लेबल्स हमने लगा दी अपने ऊपर, तो परमात्मा से मिलन कैसे होगा? नहीं होगा। ये लेबल्स हटाओ, ये मैं नहीं हूं, ये शरीर के लेबल्स है। मैं तो एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश पुंज हूं। तो समानता का विचार यही संबंध जोड़ेगा। तो जैसे हमने ये महसूस किया, मैं आत्मा भी निराकार हूं, ज्योति स्वरूप हूं, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। फिर गुणों की समानता, मैं दुखी हूं, मैं अशांत हूं, मैं पतित हूं, ये नहीं। हम आरती में ये गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी पापी कृपा करो भरता। अब राजयोग कहता है तुम कामी पापी खल कपटी ये सब नहीं हो, ये भी एक अज्ञान है। दो प्रकार का अज्ञान हम व्यक्त करते हैं, वास्तव में ये दोनों ही अज्ञान है। एक अज्ञान है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपनी उपलब्धियों का घमंड, अपनी टैलेंट्स का घमंड, ये अज्ञान है, क्योंकि आज है कल नहीं होगा। और दूसरी ओर हीनता की भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ही अज्ञान है। तो ज्ञान क्या कहता है? मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। तो वो समानता का चिंतन होने से मिलन होगा और वो एकाग्रता आएगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा रही हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा प्रेम के सागर में समा रही हूं। और इसी एकाग्रता से हम जैसे गहराई में जाएंगे, वो गुण का हम स्वरूप बन सकेंगे। और इसी के आधार से हम महसूस करते, जैसे सूरज की किरणें एक कॉन्वेक्स लेंस से फोकस करते हैं, तो फोकस करते करते फोकल पॉइंट पर अगर कागज को रखते हैं, वो किरणें कागज को जला देती है, क्योंकि उनको केंद्रित किया, उनको एकाग्र किया, उनको कॉन्सेंट्रेट किया। वैसे सूरज की किरणें कागज को नहीं जलाएगी, पर क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हुई रेस की, वो इतनी शक्ति पैदा करती जो कागज जलने लगता है। अब यही एकाग्रता की शक्ति से हम महसूस करते हैं, अनेक जन्मों के पाप भस्म होते हैं, आत्मा का शुद्धिकरण होता है, हमारे चिंतन में परिवर्तन आता है। जैसे सोने में खाद पड़ी होती है, वो आग में डालने से वो खाद निकलती जाती है, और एलॉय जो है वो सब पिघलते जाते हैं और सोने का शुद्धिकरण होता है। तो आत्मा भी सच्चा सोना है, पर ये विकारों की खाद पड़ गई खुद को भूलने से। अब ये खाद हटती जाएगी एकाग्रता की शक्ति से, और महसूस करेंगे कि कैसे मैं आत्मा, वो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, अपने रियल निखार में आ गई हूँ, वो महसूसता होगी। और उसके आधार से वो गुणों का जो प्रभाव अंदर में भरा, वो फिर हम औरों तक भी बांट सकेंगे। हमारे चेहरे से, हमारी चलन से, हमारे व्यवहार से, हमारी दृष्टि से, हमारी स्मृति से, हमारी स्थिति से, ये सब अनुभव होगा, जिसको हम कहते हैं आत्मा की बैटरी फुली चार्ज्ड हो गई, क्योंकि परमात्मा से कनेक्टेड हो गई। और इसी चार्ज की शक्ति में हम अपने आप में वो परिवर्तन महसूस करेंगे। तो आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, आत्मसंयम, आत्मबोध और आत्म परिवर्तन, और उससे हम विश्व को भी परिवर्तित कर सकेंगे। एक के परिवर्तन से परिवार में परिवर्तन, परिवार से समाज में, समाज से देश में, देश से विश्व में। एक अगर व्यक्ति बुरा है परिवार में, शराबी है, गुस्से वाला है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, वो एक व्यक्ति सारे घर को नरक बना सकता है, एक व्यक्ति बना सकता है। तो क्या एक अच्छा व्यक्ति, गुणों से भरपूर व्यक्ति, क्या अपने परिवार को अच्छा नहीं बना सकता है? बुरा बना सकता है एक व्यक्ति तो अच्छा नहीं बना सकता है? किसकी शक्ति ज्यादा है, बुरे की शक्ति ज्यादा है या अच्छे की शक्ति ज्यादा है? किसकी शक्ति ज्यादा है? हाँ, लेकिन आज बुरे की शक्ति ज्यादा हो गई है। बुरे लोग बहुत जल्दी मिल जाते हैं, अच्छे लोग मिलते ही नहीं है आपस में। अच्छे हैं तो मिलो ना आपस में, तब शक्ति बढ़ेगी। इसलिए ये संगठन को बुलाया, सब अच्छे लोग यहाँ आए हो, सभी अच्छे लोग आए हो यहाँ, बुरे लोग थोड़ी आएंगे यहाँ। इसीलिए अब परमात्मा कहते हैं, अपनी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्थिति, वातावरण इस विश्व को बदल सकते हो, बदल सकते हो। हर एक में ये क्षमता है, बस केवल अपने आप को पहचानो, अपनी नेगेटिविटी को खत्म करो, दूसरों की भी पॉजिटिविटी को देखो, उनको भी उस आत्म दृष्टि से देखो और उसी स्मृति से उनको पहचानो, और फिर सब संबंध परमात्मा से जोड़ो। एक परमात्मा से सच्ची प्रीत होगी ना, तो ऑटोमेटिकली सबसे प्रीत होगी, सबसे। जैसे पेड़ को पानी देना है तो एक एक पत्ते को देने की जरूरत नहीं है, बस बीज को दे दो, जड़ को दे दो, पूरे पेड़ को मिल जाएगा पानी। तो एक एक व्यक्ति से प्रीत अलग अलग रूप से रखें ये जरूरी नहीं है, एक ईश्वर से प्रीत रखो तो सब के लिए प्रीत हो जाएगी हमारी, क्योंकि सब उस पिता के बच्चे हैं, वसुधैव कुटुंबकम है, सब हदें खत्म हो जाएगी। पर यही राजयोग हमें सिखाता है। तो चलिए अब इसका हम अभ्यास करेंगे, और इसी अभ्यास में हम परमात्मा से कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन इतना हमारे अंदर आत्मविश्वास हो, इतना परमात्मा से सच्चा प्यार हो कि उनको ही हम देखें, उनसे ही बातें करें, उनसे ही सर्व संबंध जोड़ें और उनसे ही सर्व प्राप्ति करें। हमारी आंख कहीं भी और जगह डूबनी नहीं चाहिए। तो सीधा बैठेंगे, अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? और अपने आप को ही उत्तर दे, मैं एक आत्मा हूं, अंतर में अपने आप को पहचाने, अपना ध्यान भ्रकुटी पर करें और आंखें सामने देखें, सामने से आपको वाइब्रेशंस मिलेंगे। खुद को भ्रकुटी पर देखें, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, बहुत सूक्ष्म हूं, एक चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा अत्यंत हल्की हूं। प्रकाश पुंज हूं। यह शरीर मेरा एक वस्त्र है जो मुझ आत्मा से अलग है। मेरा मूल वतन इस पांच तत्वों की दुनिया से बाहर जहां सूर्य चंद्रमा और सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता वो शांति धाम है। उड़ जाएं उस वतन में मन और बुद्धि से। और मन की आंख परमात्मा को देखिए उस बेहद प्रकाश की दुनिया में। जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है, अनहद है, अनंत है। मेरे परम पिता है। मेरे प्यारे शिव पिता, आप रूप में बिंदु हो और गुणों में सिंधु के समान बेअंत हो। आप शांति के सागर हो। मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं। शांत स्वरूप, शांत स्वरूप। चले जाएं शांति के सागर में। शांत स्वरूप, मेरी चारों ओर शांति ही शांति है। खो जाएं परमात्मा के प्यार में जो सत्यम शिवम सुंदरम है। गुणों का सागर है जिसके साथ मेरे सर्व संबंध है। प्यारे शिव बाबा, आप ही मेरे मात पिता हो, बंधु सखा हो, स्वामी सतगुरु हो, आपसे सर्व संबंध जोड़कर मैं आत्मा धन्य हो गई। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है, सुनहरा लाल प्रकाश। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के गुणों में समा गई। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव को अनुभव कर रही हूँ। सर्वशक्तिमान शिव पिता की संतान, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम स्वरूप आत्माओं, परमात्मा का सच्चा प्यार मुझ आत्मा को मिल रहा है। आनंद के सागर शिव बाबा की संतान, मैं आनंद स्वरूप हूँ। आनंद मग्न हो जाए, परमात्मा के प्रेम में खो जाए, कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। अब इस शक्ति से भरपूर होकर वापिस लौटे। साकारी दुनिया में अपने साकारी शरीर में और फिर से कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बन के कर्म करें। तो हर कर्म कुशल होगा, श्रेष्ठ होगा, सुखदायी होगा और ये जीवन अति सुंदर सार्थक होकर सफल होगा। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति।